ओम शांति। व्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर एक। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो? सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया? तो माया की छाया से बचने का यह साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है या खुशी गुम होती है? कभी भी देखो, खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देती है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है, कमजोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारी का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेंगे। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो शुद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत का है और ब्राह्मण जीवन खुशी का है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करना पसंद है? युद्ध करना अच्छा लगता है? छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है? कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले, छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना, सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा है। क्या करे, कैसे करे, ये शब्द फिक्र के है। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं। चक्कर लगाने वाले नहीं, संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरे को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सदा अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सेफ आत्माएं अनुभव करते हो? याद ही छत्र छाया है, याद ही कवच है। सदा छत्र छाया में है, सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया। माया अर्थात माया किसको कहा जाता है? माया की क्या क्या परिभाषा है बाबा ने दी है अब तक? एक तो कमजोरी और देहभान, विकार और अज्ञान, अंधकार, व्यर्थ, अलबेलापन, विस्मृति और सुस्ती, अलबेलापन, काहिल, वो सब एक ही है। संग दोष भी माया है और मुख्य पांच विकार और बाकी सूक्ष्म जो भी है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मद, मत्सर। विशेषता की मगरूरी, क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, ये दो भी माया है। मेरापन भी माया है, मैं, मेरा और मेरे, तीनों माया है। नींद, ज्यादा नींद की कम नींद अनावश्यक कौन निर्धारित करेगा आवश्यक और अनावश्यक को? वो हर बात, वो हर चीज, वो हर वस्तु जो हमें परमात्मा से दूर ले जाती है, उसकी वो है माया। माया को परिभाषित करना बहुत कठिन है। सन्यास में, वेदांत में माया को नाम और रूप जो है उसे माया कहा गया है। भक्ति में माया परमात्मा की एक शक्ति कहा गया है, इनस्क्रूटेबल पावर ऑफ द लॉर्ड, अनिर्वचनीय शक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो परमात्मा की शक्ति। भक्ति में, सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति को माया कहा गया है। भक्ति में स्त्री को भी माया कहा गया है, धन को भी माया कहा गया है। राम सामने चल रहा है, पीछे लक्ष्मण, बीच में माया है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। अगर लक्ष्मण को, राम को पाना है तो दो मार्ग है फिर। एक तो सीता की शरण में जाओ, वो है देवी भक्ति। शाक्त संप्रदाय वहां उत्पन्न होता है जिसमें देवी की शरण में जाते हो तो परमात्मा की प्राप्ति। दूसरा है वेदांत, सन्यास, सीता को हटा दो, वो सन्यास मार्ग है। ये भक्ति मार्ग है, एक भक्ति मार्ग, एक सन्यास मार्ग। तो माया और क्या है? क्रिश्चियनिटी में माया सैटन, माया को सैटन कहा गया है। सेवन इविल सिंस कहा गया है वहां पर, सेवन डेडली सिंस, उसमें काम क्रोध यही सब थे। शैतान इस्लाम में कहा गया है माया को, बौद्ध में मारा कहा गया है, जो कि बुद्ध अपनी साधना कर रहा है बोधि वृक्ष के नीचे, अंतिम साधना उसकी, जहां उसको बोधि तत्व प्राप्त हुआ, जो बोधि सत्व बना हो, उसके पहले मारा उसको अटैक करती है। मारा अर्थात वहां पर स्त्री ही दिखाया है। किसी में कामिनी कांचन को माया कहा गया है, कामिनी और कांचन, कांचन अर्थात धन,
सोना,
कामिनी अर्थात स्त्री, स्त्री और धन, कामिनी कांचन माया है। तो माया अर्थात कामिनी कांचन, माया अर्थात प्रकृति, माया अर्थात धन, माया अर्थात ईश्वर की ही शक्ति शास्त्रों में। सन्यास में अनिश्वरीय शक्ति, नहीं अनिश्वरीय शक्ति, ईश्वर की ही शक्ति को भी माया कहा गया है, भगवान की शक्ति। माया जब भी कृष्ण कुछ काम करना होता है वो अपनी योग माया को बुलाता है, तो योग माया उसके लिए कार्य करती है। उसकी माया है ना वो, उसकी माया ऐसी है कि उसमें सब भूल भुलैया है, उसमें सब खोए हुए हैं। ये संसार की अब तक की माया, वेदांत ने नाम और रूप को माया कहा गया है। जिस जिस वस्तु का नाम है और रूप है वो सभी माया है। और भगवान ने आकर कहा ये पांच विकार माया है। अब तक की माया के सिद्धांत, माया शब्द कोई नया नहीं है, पुराना है। किसी ने इस संसार को ही माया कहा है, ये संसार मायामय है, एक मायावाद है। मायावाद को ही वेदांतवाद कहा जाता है, अद्वैत वेदांतवाद, जो शंकराचार्य ने जिसकी स्थापना की। तो बाबा कह रहे या तो रहेगी छत्र छाया आपकी, या तो रहेगी माया। अगर छत्र छाया नहीं है, छत्र छाया अर्थात याद, अगर याद नहीं है तो जो है वो सब कुछ माया है। जब हम याद में नहीं है तो उसके अतिरिक्त तो जो कुछ है, फिर वो साधारण संकल्प भी माया है, वो व्यर्थ संकल्प भी माया है, वो निगेटिव संकल्प भी माया है, वो प्रश्न उत्तर, प्रश्न चिन्ह जो है वो सब माया है। क्या क्यों माया कुछ ना कुछ रॉन्ग काम कराती है। माया कोई व्यक्ति नहीं है, माया कोई दृश्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ अदृश्य है। तो याद की छत्र छाया भी अदृश्य है और माया की छाया भी अदृश्य है। ये खेल अदृश्य का है, ये लड़ाई दो अदृश्य शक्तियों की है। बीच में हम युद्ध स्थल वो तो निरंतर युद्ध स्थल है, निरंतर दिवस रात्र अम्मा युद्धा सा प्रसंग अंतर्वाय जगानी मन, ऐसा एक श्लोक है महाराष्ट्र में। तो कहा मैंने दिवस रात्र अम्मा युद्धा सा प्रसंग, दिन रात हमें युद्ध युद्ध है, बाहर का जग और मन, अंतर्वाय जग आनी मन, निरंतर ये स्थान हर स्थान युद्ध का स्थल। तुम हर एक युद्ध के मैदान में इंडिपेंडेंट सिपाही हो, साकार महावाक्य बाबा के। तुम हर एक युद्ध में, इस युद्ध स्थान में इंडिपेंडेंट सिपाही हो। तो एक तो होगी माया की छाया, या होगा परमात्मा छत्र छाया। तो जब भी हम माया बाबा की याद में नहीं है, इसका मतलब माया के वश है, माया के अधीन है, संकल्पों में चाहे फिर कर्मों में आएगा वो। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे जो छत्र छाया में है, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए। फिक्र भी माया है, चिंता भी माया है, चिंता करना वो भी माया का ही रूप है एक। फिक्र है तो खुशी गुम होती है, उदासी आ जाना भी माया है, दुख का दुख की महसूसता भी माया है। क्या क्या इस संसार में जो कुछ दृश्यमान है, संसार में तो वही कहा है ना, माया ही माया है, माया ही माया है। क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई चिंता फिक्र बोझ, चिंता फिक्र बोझ खुशी को गुम कर देती है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। माया बहुत ही जबरदस्त एक शत्रु है, वो हमारी हर कमजोरी को जानती है। सबसे पहले खुशी को गुम करती है, फिर कमजोर बनाती है, और फिर अटैक करती है। तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। जब व्यक्ति के सामने कोई परिस्थिति आती है, दुखी हो जाता है, उसी समय वो ज्ञान योग से थोड़ा छोड़ता है, सोचता है परिस्थिति से थोड़ा निपटू, ज्ञान योग थोड़ा बाजू रख के इसको ज्यादा टाइम दू। बस ज्ञान योग से दूर हुआ कि वहां ही माया का अटैक होता है। फिर दुखी हुए तो दुखी होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान योग से थोड़ा दूर हटता है। रोज मुरली जो पढ़ रहा है उसको उस दिन लगता है आज नहीं पढ़ू, इच्छा नहीं होती है पढ़ने की, आज थोड़ा आराम करते हैं। या शरीर की कोई बीमारी आ गई तो लगता है कि आज थोड़ा आराम करना चाहिए। थोड़ा सा ये परिस्थितियां ज्ञान योग से जैसे उसको हटाती है, बस वही समय है माया का अटैक होने का, वही समय माया का अटैक हो जाता है। तो कमजोर अगर हुए तो माया का आह्वान होते। बाबा ने उदाहरण दिया है एक मेडिकल का, शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है। हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी पावर होता है, जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसको पहले से ही बहुत सारी बीमारियां है, या फिर जिसमें जैसे एड्स की बीमारी जब होती है, व्यक्ति एड्स से कभी नहीं मरता है, वो मरता है एड्स के कारण शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाती है, और उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, फिर टीबी की बीमारी हो जाएगी और बाकी बहुत सारे, क्योंकि कमजोर है शरीर, उतनी शक्ति नहीं है, इम्यूनिटी कम है, तो बाकी बीमारियां होती है। तो यहां पर भी कमजोर अगर है तो फिर उससे माया का आह्वान होता है। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो वहां पर विकार उत्पन्न होते हैं, जो विकार आज तक उत्पन्न नहीं हुआ था। सोच रहे थे हमने काम वासना को जीत लिया, अभी काम का कोई संबंध भी नहीं है, अभी तो कोई और परिस्थिति आई थी जिसने दुखी किया था, जिसका विकार से कोई संबंध नहीं था, वो तो परिस्थिति ऐसी थी, जैसे कोई शारीरिक बीमारी आ गई उसमें विकार का ज्यादा संबंध नहीं है, पर उससे मन कमजोर हुआ, मन में व्यर्थ थोड़ा चला। ये समय है कि विकार यहाँ पर आक्रमण करेंगे। वो विकार कि जिसका हम सोच रहे थे हमने जीत लिया है काम, वहीं क्रोध आएगा। हमें क्रोध आने का कोई कारण नहीं है, परंतु मन यहाँ कमजोर हुआ है, वहां क्रोध का आक्रमण होगा, लोभ का आक्रमण होगा। जो हमने कभी लोभ पता ही नहीं जीवन में क्या होता है, वहां लोभ आ जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह, मोह आज तक किसी में था ही नहीं। वैराग की चर्चा करते थे दिन रात, दिन रात वैराग पर भाषण दिया करते थे हम। लोग हमें देखकर उदाहरण देते थे कि इनके जैसा वैरागी होना चाहिए, और अभी हम में ही आसक्ति उत्पन्न हो रही है, अहंकार उत्पन्न हो रहा है। ये पांचों ही विकार वहां अटैक करते हैं जब मन कमजोर हो जाता है। इसके लिए कल बाबा ने कहा है रूप परिवर्तन कर दो इन सब का। लोभ है तो अनासक्त वृत्ति, अभिमान है तो स्वाभिमान, मोह है तो स्नेह, काम है तो शुभ कामना, क्रोध है तो रूहानी खुमारी। तो तुम्हें सलाम करेंगे, सहयोगी स्वरूप बन जाएंगे, दुश्मन को भी परिवर्तित कर दो, ये वो है विजयी। विकारों को दबाओगे तो निकलेंगे बाहर, उनका रूप ही बदल दो, उनका रूपांतरण, उदात्तीकरण, दिव्यीकरण, पवित्रीकरण, डिवाइनाइजेशन, सब्लिमेशन, डीसेक्सुअलाइजेशन, ये कार्य करना है तो हो सकता है। तो यहाँ बाबा जो कह रहे हैं कि शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी, आत्मा के कमजोर संकल्प, कमजोर संकल्प कमजोर संस्कार बन जाते हैं, संडे की मुरली। कमजोर संस्कार, कमजोर संकल्प अगर करेंगे तो वो कमजोर संस्कार बन जाएंगे। माया का आह्वान करती है, फिर उस छत्र छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेंगे, स्वप्न में भी वही सब संकल्प चलेंगे, वही विकार, वही वासनाएं स्वप्न में आएगी। जो सारे दिन भर चलता है वही स्वप्न में उदय होता है। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाएंगे तो यहाँ फिर युद्ध करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ हमें श्रीमत याद है और एक तरफ मन में ये संकल्प चल रहे हैं, तो यहाँ युद्ध का आरंभ हुआ। अब तक युद्ध नहीं था, अब तक सहज चल रहे थे क्योंकि श्रीमत पर थे, कॉन्फिडेंस था कि श्रीमत पर है। पर जैसे मन कमजोर हुआ, विकार आए जो अब तक आए नहीं थे, अब उनको हटाने का, अब उनको भगाने का संघर्ष। क्षत्रिय जीवन मेहनत का है और ब्राह्मण जीवन खुशी का है, तो क्या पसंद है। कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है, युद्ध करना अच्छा लगता है, छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। छोटा सा ही व्यर्थ संकल्प है, छोटा सा है, परंतु इतनी मेहनत कराता है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। सोचते ये नहीं आना चाहिए पर भी फिर आता है, बार बार आता है। इसलिए सदा बाप के छत्र याद की छत्र छाया में रहो, याद ही छत्र छाया है। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है, सदा खुश रहने वाले। छत्र छाया अर्थात खुश रहना, बेफिक्र होंगे ना, सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा, क्या करे कैसे करे। ये शब्द फिक्र के है, यहाँ से माया की शुरुआत होती, क्या और क्यों। ज्ञान ये कहता है, ये माया शुरू होती है, ऐसा क्यों, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा किया क्यों, ये सब माया है। यहाँ से माया की शुरुआत है, जहां से वो शुरुआत होती है बस वही को वो हम अगर पकड़ ले तो आगे बात नहीं बढ़ेगी, वहां हम उसको ढीला छोड़ देते, हमको लगता है जरूरी है। फिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। जिज्ञासा भी माया को उत्पन्न करती, क्या क्या विजय के होते हैं, बेफिक्र के। फिक्र बोला बेफिक्र के, मैं कह रहा था जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा वो क्या है, ये भी माया को जन्म देता है। ये होता क्या है? विकार है क्या? कैसे उत्पन्न होता है? माया है क्या जो काम से संबंधित है? काम है क्या? जाने तो सही, समझे तो सही उसको क्या है, बस ये जिज्ञासा ही माया में ले जाती है। इसमें है क्या? इस किताब में लोग कहते हैं ये किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, पर ऐसा है क्या? जानू तो सही, कुछ तो होगा इसमें, जानू खाली क्या है इसमें, फिर हम थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, क्या है ये किताब में ऐसा क्या है, इस उपन्यास में ऐसा क्या, इस मैगजीन में ऐसा क्या, इस मूवी में ऐसा क्या, इस फिल्म में ऐसा क्या, इस वीडियो में ऐसा क्या है, ये है क्या? हम साक्षी होके देखेंगे, जाने तो सही पर क्या है ये। लोग कहते हैं इसे नहीं देखो, पर हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी धारणा बहुत मजबूत है। ये जिज्ञासा उसे जानने की, जिज्ञासा एक आतुरता है अंदर से, ऐसा लगता है हम अपना अज्ञान को मिटाए, पर वो जानने की जिज्ञासा ही उसमें फंसा देगी। देह को देखकर देह की वासनाओं से मुक्ति नहीं हो सकती है, देह को बिना देखे ही देह की आसक्ति से मुक्त होना है। कोई सोचे मैं देह को देखते देखते देह की आसक्ति से मुक्त होता हूं, देह को देखता रहूंगा और सोचूंगा कि ये नश्वर है, देह को देखूंगा और सोचूंगा कि ये नश्वर है, अस्थि पंजर है, तो उससे नहीं होगा, वो क्रिया ही उसे फंसा देगी एक दिन। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती है। सदा खुशी के ये गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, यही पूरा करें कल। ओम शांति।